अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी, पहले आदमी की स्टोरी से अल्लाह ताला ने आगाज किया है। पहली स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी जो कुरान में आती है, वो आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। और उस स्टोरी से हमने क्या सीखा अपने लिए, ये अहम बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में खलीफा बना के भेजा, अपना खलीफा बनाया, कि अल्लाह ताला ने चाहा कि इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के कानून को नाफिज करे, अल्लाह ताला की भेजे गए अहकामात के मुताबिक अमल करें। उसके बाद हमें पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह ताला ने जब पैदा फरमाया तो कैसे उनको फजीलत दी, किस तरह से फजीलत दी, क्या ऑनर दिया उनको। अल्लाह ताला ने उनको इल्म की नेमत अता फरमाई और इसी इल्म की वजह से उनको फरिश्तों के ऊपर भी बरतरी हासिल हुई। और फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि उनको सजदा करें, सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। और इबलीस ने किस लिए सजदा नहीं किया, कि उसके अंदर तकब्बुर था। और अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम के साथ उनका जोड़ा भी पैदा फरमाया और उनको फरमाया कि आप जन्नत में रहो, जो मर्जी खाओ पियो। और इतने उनको ये अल्लाह ताला ने एक अपनी एक और फजीलत दी कि उनको जन्नत में बसाया और साथ उनको ये हिदायत दी कि इस दरख्त के पास ना जाना। उधर शैतान ने जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सजदा नहीं किया था तो अल्लाह ताला ने उसको जिसको कहेंगे कि धुतकार दिया और निकाल दिया। और उसने अल्लाह ताला से जो इजाजत चाही, ये हम किस्सा और भी जगहों पे कुरान पाक में देखेंगे तफसील से, कि मुझे इजाजत दे के मैं इंसान को बहकाऊं, और वो इसमें फिर कामयाब हो गया जब उसने कसमें खाई। अब जहां तक ये सवाल है कि वो कैसे जन्नत के अंदर एंटर हुआ, जन्नत में तो वो तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो काफिरों में से था, जन्नत में तो काफिर नहीं एंटर हो सकते। देखें ये जो डिटेल्स है ना, बहुत सारी किताबों में है, बहुत सारी तफसीरों में है लिखी हुई, लेकिन मैंने आपको क्यों नहीं बताई, इसकी कोई वजह होगी ना कि मैंने आपको क्यों नहीं इतनी डिटेल बताई, क्योंकि अक्सर इसराइली रिवायात है। इसराइली रिवायात का कुछ आपको भरोसा नहीं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। सेकेंडली, जिस चीज का हमारे अमल से कोई ताल्लुक ना हो ना, उसके ऊपर खाम खा एक बहस किए जाना, वो दरख्त कौन सा था जो उन्होंने खाया, वो गंदम था कि क्या था, वो कैसा था, शैतान कैसे पहुंचा उसके अंदर जन्नत के अंदर, क्या वो सांप के मुंह में बैठ के पहुंचा या वो खुद ही चला गया, वो जन्नत में उसकी एंट्री हुई कैसे, वो तो जन्नत में जा नहीं सकता जब वो काफरों में से था। इसके ऊपर भी बड़ी बहसें हुई कि ये जन्नत कौन सी है, ये वही जन्नत है जिसमें हमने जाना है या अल्लाह ताला ने, यानी जिसको जन्नत खुल्द कहते हैं, या फिर अल्लाह ताला ने कोई और जन्नत बनाई थी जिसमें उनको टेम्परेरीली ठहराया हुआ था। तो वल्लाहु आलम, हमारे लिए जो समझने की बात है ना वो यहाँ पे बताई गई। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात होती ना समझने के लिए कि शैतान पहुंचा कैसे, अब इस खोज में पड़ जाए, वो चाहे जैसे भी पहुंचा, इससे ना मुझे ना आपको कुछ भी अमल में फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। वो कितनी भी हम खोज लगा ले, हम ऑथेंटिक बात पे भी पहुंच जाए अगर, तो इससे क्या मिलेगा हमें, या वो जन्नत कौन सी थी जिसमें ठहराया, इससे हमें क्या फायदा होगा बताएं। सोचने की बात यह है कि शैतान ने उनको बहका दिया और बहकाया किस तरह से, और फिर उनको निकलवाया वहां से, और अल्लाह ताला ने बता दिया उस वक्त कि यहां पे कि ए भी तू वादुकुम लिबादिन आदुम, क्या आप आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे। अब ये कि आगे फिर से आया ये, और मैंने आपको ना शुरू में ही एक बात बताई थी कि कुरान करीम में जो वाकयात हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, यानी ये हुआ पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे नहीं है। बात आगे पीछे भी, ये भी हमें इस तरह से लगता है कि हम एक स्टोरी बयान करें तो ऐसे हम बयान करेंगे, लेकिन कुरान पाक का स्लूप डिफरेंट है, उसमें ऐसे ऐसे बात नहीं है कि इसके बाद ये, फिर ये बात क्यों आई। अब वो जमीन पे उतर आए, फिर उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, और फिर ये दोबारा बताई गई बात कि जब वो ऊपर थे तो उनको बताया गया कि ए भी तुम इनहा जमीआ, सब के सब उतर जाओ, उनमें शैतान भी था, उनमें आदम भी थे, उनमें हव्वा भी थी, सब थे। और फिर आदम अलैहिस्सलाम को ये हिदायत दे दी गई कि मेरी तरफ से ये हिदायत आएगी आपके पास, आपकी जुर्रियत के पास आएगी। जो मेरी हिदायत पर चलेगा उसको कोई खौफ और गम नहीं होगा, यानी वो प्रोटेक्टेड रहेगा खौफ से भी गम से भी। और यही दोनों चीजें हैं जिनको पाना इंसान इतनी कोशिश करता है कि मैं इनसे फ्री हो जाऊं। वो पैसा भी इतना बेतहाशा क्यों कमाता है? वो कहता है मुझे आगे कोई खौफ ना रहे, मुझे कोई डर ना रहे कि कल को अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा कारोबार खराब हो गया तो क्या होगा, मुझे कोई फिक्रो फाका ना रहे, कहता है ना। उसके लिए वो कमाता भी है, उसके लिए वो अपने आप को इतना मेहनत में भी लगाता है, उसके लिए उसके बहुत एफर्ट लगती है कि कोई खौफ ना रहे। और जो मेरा हाल है और माजी बनता जा रहा है उसमें भी कोई गम ना हो। लेकिन इसका नुस्खा अल्लाह ताला ने इसमें नहीं रखा कि इंसान माल कमाए तो उसको ये मिलेगा। फरमाया जो मेरी हिदायत की तिबा करेगा उसके लिए खौफ और गम नहीं होगा। और अल्टीमेट खौफ और गम यहाँ पे दुनिया में तो कभी नहीं खत्म हो सकते, तो ऐसे वाकयात होंगे जिनमें खौफ भी होगा गम भी होगा, लेकिन अल्टीमेट जो ये मिलेगा खौफ और गम से निजात, ये सिर्फ आखरत में जाके मिल सकती है। फिर इसके बाद हमने उनकी भी मिसाल देखी, एक मिसाल नहीं एक बात देखी कि जो लोग कुफर करेंगे उनके साथ क्या होगा। अब अल्लाह ताला ने यहां पर जो हम आज आयात पढ़ने वाले हैं इनमें हमें समझाया, एक ऐसी कौम का जिक्र करके, एक ऐसी कौम का बताकर, एक ऐसी उम्मत आई है जो हमसे पहले गुजरी है, कि अल्लाह ताला ने उनको एक बड़ा मकाम दिया, उनके पास वही का इल्म भी आया, उनको अल्लाह ने दुनियावी इल्म भी दिया, और अल्लाह ताला ने ये चाहा कि इनको रोल मॉडल बनाए दुनिया के लिए, ताकि ये जो बात है ना कि जो अल्लाह की वही की इत्तेबा करेगा उसको कोई गम और खौफ नहीं रहेगा, तो वो रोल मॉडल बन के दिखाएं, उनके पास वही आएगी वो उसके ऊपर चलेंगे, फिर उसके बाद दुनिया को वो ये बात साबित करेंगे कि देखो जो अल्लाह के वही के मुताबिक चलने वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अल्लाह ने इनको चूज किया रोल मॉडल बनाने के लिए, ठीक है, कि लोग इनको देखें और अल्लाह ताला के पैगाम की इत्तेबा करने को समझे कि वो कितनी बड़ी चीज है, वो जिंदगियों को कैसे पुरसकून बना देती है, कितने आइडियल हो गए ये लोग, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो इस इतनी बड़ी फजीलत को संभाल ही नहीं सके, उन्होंने वैसे अमल ही नहीं किया। उनके पास अल्लाह ताला ने तकरीबन कहा जाता है 4,000 पैगंबर भेजे जो इनके पास आए, लेकिन फिर भी ये लोग समझे नहीं संभले नहीं। तो ये कौन लोग हैं? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, आपको पता है ना इसहाक अलैहिस्सलाम का, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के, आपको पता है 12 बेटे थे, उनकी औलाद कहलाती है ये, जिनका जिक्र हम पढ़ने जा रहे हैं। ये समझ लें कि पहले चोजन पीपल थे, पहले अल्लाह ताला के चुने हुए लोग थे। इस सूरत में आप इनको बहुत डिटेल में देखेंगे, बल्कि आगे तकरीबन 100 आयात आप इन्हीं के ऊपर देखेंगे, और इनका जिक्र जाके खत्म होगा आयत नंबर 123 पे, ठीक है। अब ये जो शुरू की, ये जो पहली 7 आयतें आज हम देखेंगे आयत नंबर 146 तक, इनमें इनको प्यार मोहब्बत से बात बताई गई है, समझाया गया है। अब आप सोचेंगे वो तो गुजर गए लोग, तो अब क्यों इनको, जब कुरान उतर रहा है तब क्यों उनको बताया जा रहा है? नहीं, गुजर तो गए लोग, उनकी औलाद में से आगे नस्लें चलती गईं जो बनी इसराइल कहलाए, यहूदी कहलाए, और यहूदी मदीना में भी थे। और ये याद रखें सूरतुल बकरा मदनी सूरत है, यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हिजरत करके, तो यहाँ पे मदीना में यहूद के 3 कबाइल मौजूद थे, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने आज भी दुनिया में आपके सामने, आप कोई बात हक की कर रहे हैं, कोई इस्लाम की बात कर रहे हैं, आपके सामने अगर मुशरिक लोग भी हैं और कोई ज्यू या कोई क्रिश्चियन भी है, आपको क्या लगता है कि कौन आपकी बात को ज्यादा समझ सकता है? यही लगता है ना, जो ज्यू और क्रिश्चियन है। क्योंकि दूसरा तो बिल्कुल ही बुत परस्त है, कम से कम ये एक अल्लाह की तरफ से आए हुए मजहब और अल्लाह की तरफ से आई हुई किताबों के हामिल है ना। तो यही कुछ यहाँ पे भी बताया जा रहा है इनको कि तुम्हें तो बहुत बेहतर होना चाहिए था, उनसे क्या डिमांड की जा रही है वो बताया जा रहा है, फिर आगे उनको कुछ अहकामात दिए जा रहे हैं। तो सारे का सारा जो ये आयते हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनसे मुतालिक हैं, उनको कहा जा रहा है, उनको खिताब किया जा रहा है। मगर याद रखिए कुराने करीम में जब भी किसी से बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस उनसे बात हो रही है, हमारा तो इसके अंदर कोई ताल्लुक ही नहीं। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बात बता दी जिससे हमें पता चलता है कि कितना गहरा ताल्लुक है हमारा इनकी बातों से। कोई भी कुराने पाक में ना बात फालतू नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि ये जो अहले किताब है यहूदो नसारा है, फरमाया मेरी उम्मत पे भी वो तमाम हालात वारिद होके रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाबे होती है, यानी बिल्कुल सेम हालात गुजरेंगे। एक हदीस में ये कि तुम में वो तुम भी वो सब करोगे जो पिछली उम्मतों ने किया, हत्ता कि अगर वो गो के बिल में भी घुसे तो तुम भी घुसोगे, और उनमें से कोई बदबख्त ऐसा भी अगर हुआ कि अपनी माँ से जिना करे तो तुम में से भी लाजमन कोई बदबख्त ऐसा पैदा होगा जो यही हरकत करे। यानी इतनी हद तक वो ही काम होंगे जो उन्होंने किए। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनकी जो बुराई थी, उनकी जो बिगाड़ था एक अकीदे में अखलाक में, वो हमारे सामने हाईलाइट करके दिखाया ताकि हम समझ जाएं, हम अकल करें, हम समझ करें कि देखो हमने ऐसा नहीं करना जैसे ये थे। दूसरे, आपने सूरत अल फातिहा के एंड में पढ़ा था मग़दूब अलैहिम के बारे में पढ़ा था ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इनसे मुराद वो लोग हैं जिनके पास इल्म है लेकिन अमल नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये यहूदी हैं, तो यहूद क्यों नहीं कह दिया गया, मगदूब क्यों कहा गया कि अल्लाह यहूदियों के रास्ते पे ना चलाना। इसलिए नंबर वन, सब यहूदी ऐसे नहीं होंगे, उनमें भी कुछ लोग होंगे जो ईमान लाएंगे। दूसरा क्या बात है, अगर सिर्फ यहूदी कह दिया जाता तो बाकी सारे फारिग होके बैठ जाते, ये तो यहूदी हैं और हम तो ऐसे नहीं हैं। नहीं, वो उसमें सब वो लोग आ जाएंगे जिनके पास इल्म हो और वो अमल ना करें। ठीक है, तो अब वो जो मगदूबी अलैहिम का हमें बताया गया, तो अब वो कैसे होते हैं मगदूबी अलैहिम, वो क्यों अल्लाह के गजब में मुबतला हुए, क्या उन्होंने ऐसा किया था, जहन में आता है ना ये क्वेश्चन, क्या ऐसा किया था, क्यों अल्लाह ताला का गुस्सा इतना उनके ऊपर हो गया कि हमें हर दफा बताया गया कि ये दुआ करो कि अल्लाह उनके रास्ते पर ना चलाना, क्या थे उनके काम, वो क्यों कैसे इस लेवल तक पहुंच गए, जबकि अल्लाह ताला की रहमत तो बहुत वसी है, हमने रहमान और रहीम में देखा था ना क्या उन्होंने किया। तो वो हमें बताया जा रहा है, अब समझ आई कि क्यों हमें ये बताया जा रहा है, क्योंकि बाज लोग फिर अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, वो बनी इसराइल के किसान है हमें क्या इससे, नहीं हमें इससे बहुत ज्यादा ताल्लुक है और ये समझने की जरूरत है कि हमारा क्या ताल्लुक है इससे सारी बात से, क्योंकि असल तो हमने पढ़ना है ना ये, वो तो पता नहीं सुनते हैं या नहीं सुनते, लेकिन मुसलमान ज्यादा तो मुसलमान ही पढ़ेंगे ना ये कुरान को, तो वो क्या लेंगे इससे, आधी से ज्यादा सूरह बकरा तो कि भाई यहूद और उसके किस्से पे चली गई, तो हमने क्या करना था? नहीं, हमारे लिए इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं सीखने की। और जब भी दूसरे की मिसाल दी जाती है ना, आप भी अपने बच्चों को कभी मिसाल देते होंगे कि बेटे फलां की जैसा बनना और बेटा फलां की जैसा ना बनना, देखो उसने क्या किया था, देते हैं ना मिसाल, तो इसी तरह उम्मते मुस्लिमा को एक मिसाल बताई जा रही, ये देखो इनको दिखाया जा रहे एक लोग और बताया जा रहा है देखो तुमने ऐसे नहीं बनना। ठीक है, और साथ साथ उनको भी दावत दी जा रही, खैर ख्वाही तो उनके साथ भी है, अल्लाह के तो सभी बंदे हैं कि तुम भी आ जाओ इधर को। तो सूरह बकरा में यहूद के बारे में बात है, मगदूब अलैहिम के बारे में बात है, और याद रखिए सूरह आले इमरान जो है उसमें दौलीन के बारे में बात है, जो ईसाई हैं उनके बारे में बात है। ठीक है, बात याद रहेगी, सूरतुल बकरा में किसके बारे में बात है? यहूद के, और सूरह आले इमरान में नसारा के। जो मकदूबे अलैहिम थे वो कैसे हैं? वो यहां है, और जो दौलीन हुए वो कैसे हैं? वो वहां पे है, हमें बताया गया। अच्छा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज के सबक को। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो। इसराइल कौन थे? इसराइल लकब है याकूब अलैहिस्सलाम का, ठीक है। इसरा का माना होता है बंदा, और ईल ईल अल्लाह, ये हिब्रू में इसका मीनिंग है, यानी वही मीनिंग जो अब्दुल्लाह का है वही इसराइल का मीनिंग है। तो ए बनी इसराइल, अब बनी इसराइल से खिताब किया जा रहा है, तो उनको ए यहूद क्यों नहीं कहा गया, या युहल यहूद कह दिया जाता? क्या बात होती है कि जब बाप का नाम लेके पुकारा जाए, अब वो बड़े बुजुर्ग कोई बाप दादा, उनका नाम लेके, मसलन आपको ही अगर नाम लेके कहा जाए ए फुलां की बेटी, और दूसरी तरफ आपका नाम लिया जाए साइमा, तो फर्क है ना दोनों में। जब आपको कहा जाए फुलां की बेटी, तो क्या मतलब होता है? एक आपके अंदर एक, आप जब ये बात सुनती हैं आप फुलां की बेटी, तो एक डिफरेंट आपके अंदर जज्बात पैदा होते हैं ना, क्या होते हैं? यानी इंसान को जिसके नाम से पुकारा जा रहा है, अगर वो मसलन आपके बाप दादा में कोई बहुत सखी है, तो कहा जाए ए फलां फलां की बेटी, वो जो बहुत सखी थे, यानी अब आप भी सखावत करो, ए फलां जो बहुत बड़े आलिम, उनका नाम लिया जाए, और आपको कहा जाए फलां की बेटी, उनकी बेटी हैं आप, तो इसका मतलब कि आपको भी इल्म की तरफ आना चाहिए, इल्म सीखना चाहिए। आप तो फलां की बेटी हैं, यानी उनके नाम की लाज रखो। यहां पे जब कहा जा रहा है इसराइल के बेटो, वो जो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के फरमा बरदार थे, अल्लाह के शुक्र गुजार थे, तुम उनके बेटे हो। तो जब पुकारा ही जा रहा है, तो इस पुकार में ही एक बात है समझने की कि तुम तो उनके बेटे हो। अब तुमसे एक्सपेक्टेशन भी क्या होनी चाहिए, तुमसे एक्सपेक्टेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि जिस जैसा तुम्हारा बाप है तुम भी वैसे करो। तो कहा गया उज़कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने इनाम की तुम्हारे ऊपर, मैंने तुम्हारे ऊपर नेमतें, बहुत नेमतें इनाम की। इनके ऊपर अल्लाह ताला ने कौन सी नेमतें इनाम की थी, और क्या मकसद है इनको नेमतें याद दिलाने का? ये दो क्वेश्चन जहन में आते हैं। अब क्या नेमतें इनाम की थी, इनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुल माईदा में फरमाया है, वह इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, या कौमी, ऐ मेरी कौम, उज़्कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो नेमतों को अल्लाह की तुम पर जो हुई। क्या नेमतें हुई? इज़ जअला फीकुम अंबिया, कि उसने भेजे तुम्हारे अंदर अंबिया, व जअलकुम मुलूका, और बादशाह तुम्हें अता फरमाई, व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन, और तुम्हें वो कुछ दिया जो जहान वालों में किसी को भी नहीं दिया। तो क्या नेमतें, पहली नेमत उन्होंने क्या बताई, अंबिया तुम्हारे अंदर भेजे। अंबिया भेजने का मकसद क्या होता है? अंबिया किसी कौम में आना मतलब अल्लाह ने उनकी हिदायत का फैसला कर दिया, अल्लाह ताला ने चाहा ये लोग सुधर जाएं, संवर जाएं, अपनी दुनिया और आखरत की कामयाबी हासिल कर लें, अपनी आखरत संवार लें, इसके लिए अल्लाह ताला अंबिया को भेजता है, ठीक है ना, उनकी अपलिफ्ट के लिए, उनको बुराई से निकालने के लिए। अब सबसे पहली नेमत, यानी इनके पास क्या, जो बहुत बड़ी नेमत है, जो हर नेमत से ऊपर है, वह है हिदायत की नेमत। यानी अंबिया के जरिए हिदायत का पैगाम अल्लाह ने भेजा ना, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मेरी तरफ से फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया, यही ना बात, मेरी तरफ से हिदायत का पैगाम आता रहेगा। तो इनके पास हिदायत का पैगाम भेजा अल्लाह ताला ने अंबिया के जरिए, और ये इतनी बड़ी नेमत होती है, क्योंकि हिदायत के बगैर कोई नेमत भी नेमत नहीं है। मसलन आपको औलाद मिल जाती है, लेकिन हिदायत नहीं है, तो वो ही औलाद इंसान के लिए गम का बाइस बन जाती है, रुलाने का बाइस बन जाती है। अगर माल है लेकिन हिदायत नहीं है तो उसी माल को इंसान अयाशियों में उड़ाता है, और वही माल इंसान के लिए सख्त हिसाब किताब का और बाज दफा अजाब का सबब बन जाता है। इसी तरह सेहत है, सेहत हिदायत के बगैर है तो वो सेहत भी है, तो इंसान गुनाहों के अंदर उस सेहत को लगा रहा है नेकियों में आने की बजाय। तो हिदायत की नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि जिस चीज के साथ भी लग जाएगी ये उसको भी नेमत बना देगी, वरना वो चीज जहमत बन जाएगी, वो चीज रुलाने का सबब बन जाएगी, अजाब बन जाएगी। तो हिदायत की इतनी बड़ी नेमत तुम्हें अता फरमाई। और फिर क्या मैंने बताया आपको कि सूरह मायदा में क्या आता है, इसके बाद बादशाहत दी। बादशाहत भी आप देखें दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम इनमें आए थे, तो बादशाहत कितनी बड़ी थी उनकी, ऐसी बादशाहत जो दुनिया में कभी नहीं किसी को मिली। आपको पता सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत कभी नहीं किसी को मिली, ना कभी मिलेगी। और क्या थी, और जो किसी को नहीं दिया आलमीन में से, क्या अल्लाह ने इनको दिया, आप देखें मनोसलवा इनके ऊपर आया, बादलों के साए इनके ऊपर आए, अल्लाह ने इनको फिरौन से निजात दी। ये सारी बातें अगले सबक में आएंगी, ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं हुआ ना। मनोसलवा किसके लिए उतरा, किसके लिए बादलों के साए होते हैं, किसी उम्मत के लिए भी नहीं। तो तुम्हें तो इतनी बड़ी अल्लाह ने नेमते नहीं, अब समझ आ गई ना। अब अच्छा, एक जो बड़ी नेमत मैंने हिदायत की आपको बताई, हिदायत किस सूरत में आई थी इनके पास, आपको पता है जो तीन बड़ी किताबें जिनका हम जिक्र करते हैं, तौरात इंजील और जबूर, सारी की सारी बनी इसराइल में ही तो आई, सारी की सारी बनी इसराइल, सिर्फ एक कुरान है जो बाहर, बाकी तो सब बनी इसराइल में आई। तो कितनी बड़ी इनको नेमत मिली। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तो तुम्हें बहुत बड़ी नेमतें दी हैं, तुम इनको याद करो। अब याद करने का मकसद क्या है, आपको कोई मसलन याद कराता है, ये देखो आपके बाप के साथ मैंने इतनी भलाई की, आपके बाप को मैंने, वो इतने मुश्किल हालात में यहाँ पे थे, मैंने उनकी मदद की, मैंने क्या याद कराना होता है। क्या आप दूसरे का एहसान मानो, आप दूसरे की कदर जानो कि इसने हमारे साथ भलाई की है, यही मकसद होता है ना नेमत याद दिलाने का, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कितनी नेमत की है, तुम ये बात नहीं सोचते। तो इससे मकसद क्या है कि अल्लाह को पहचानो। देखें जब नेमतें आती हैं ना तो नेमत देने वाले को याद रखना चाहिए, उसकी पहचान करनी चाहिए कि मुझे किसने दी है ये नेमत। और जब इंसान ये देखता है कि किसी ने मेरे पर बहुत एहसानात किए, तो फिर क्या होता है उसका नतीजा, इंसान झुक जाता है उसके आगे, फिर उसकी फरमा बरदारी करता है, उसकी इताअत करता है, उसकी कदर करता है, ठीक है, उसके आगे सर नहीं उठाता। तो इसीलिए नेमतें याद दिलाई जा रही कि सोचो तो सही है बनी इसराइल, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे पर कितनी नेमतें की। यहां पे थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं और एक बात सोचते हैं, बनी इसराइल को तो ये कहा जा रहा है, आप जरा बनी इसराइल की जगह अपना नाम रख के देखें और अपने बाप का नाम रख के देखें कि मुझे और आपको ये कहा जाए कि आप फलां की बेटी, याद तो करो अल्लाह ने तुम्हारे पर कितनी नेमतें की। सोचें क्या मेरे और आपके ऊपर अल्लाह ताला ने बेशुबहा नेमतें नहीं की हुई, ठीक है मनोसलवा नहीं उतरा, लेकिन इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई कि हम इस वक्त दुनिया में और बहुत सारे लोगों को देखें तो वो उन नेमतों से महरूम है जो मुझे और आपको मिली, बेशुमार लोग महरूम हैं। और हम जानते हैं और हम रोज उनकी कहानियां पढ़ते हैं और देखते हैं, उनको खबरों में कभी आते हैं, कभी और कहीं हमें उनकी कोई वीडियो नजर आ जाती है, हमें पता है कि लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है, और वो भी हमारे जैसे ही इंसान है जो इसी जमाने में है, जिस जमाने में हम ऐशो आराम के साथ रह रहे हैं, अपने घरों में सुकून के साथ रह रहे हैं, उसमें वो किन हालात से गुजर रहे हैं। तो अगर हम भी नेमतों को इतना एंजॉय कर रहे हैं तो ये बात हमारे लिए भी है, याद तो करो अल्लाह ने कितनी नेमतें तुम्हारे ऊपर की, इन नेमतों का नतीजा क्या होना चाहिए, इताअत उतनी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। और उल्टा होता क्या है, नेमतें जितनी मिलती हैं इंसान की सरकशी उतनी ही बढ़ती है, इंसान उतना ही अल्लाह को भूल जाता है। जब एसी लगा हुआ है तो नींद ज्यादा ही आती है, जब खाने को फ्रिज में बहुत कुछ पड़ा हुआ है तो फिर खा के नींद भी उतनी ही होगी, और फिर रोजा भी नहीं रखा जाएगा। और फिर जब इंसान के पास ऐशो आराम हो तो वो फिर पार्टीज और फन टाइम में और वेकेशंस में ज्यादा लग जाता है, सैर सपाटों में ज्यादा लग जाता है, बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में झुका रहा है। उसका फन और पार्टीइंग और मजे ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो आजी दिखाए, वो और अल्लाह की हदों को तोड़ता है। आपने देखा होगा यही होता है। अल्लाह ताला ने नियमत याद दिला के फरमाया कि इस नियमत को देख के ही नियमत देने वाले को याद करो। अक्सर हम नियमतों में खो जाते हैं, नियमत मिलती है ना तो उसके मजे में, आरामदेह बिस्तर है तो उसका मजा है, मीठी नींद आ रही है तो उसका मजा है, खाने का मजा है, पीने का मजा है, अमनो अमान का मजा है, मौसम अच्छा है उसका मजा ले रहे हैं, लेकिन जो देने वाला है उसको भूल जाते हैं। तो वैसे अल्लाह ताला को याद करना तो वैसे ही नहीं, इंसान कम ही याद करता है, भूला रहता है, लेकिन कम से कम जब नेमत मिल जाए तब तो रब याद आना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो बनी इसराइल को याद कराया ना, तो नेमत याद करा के उससे अपना आप याद कराया, क्योंकि नेमत देख के फिर याद करना आसान हो जाता है कि ये कभी ख्याल आ ही सकता है कि ये नेमत मुझे किसने दी। तो उनको देखे सुभान अल्लाह, उनको बताया नेमत मेरी याद करो ताकि तुम्हें इससे अल्लाह याद आ जाए। और उम्मते मुस्लिमों को क्या फरमाया, आगे इसी सूरत में आएगा, इसी सूरत में है, फदकुरूनी अदकुरकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। उम्मते मुस्लिमा को ये नहीं फरमाया मेरी नेमत याद करो, और जगह पे तो आता है कि मेरी नेमत याद करो, लेकिन इस सूरा में इनको कहा मेरी नेमत को याद करो और उससे मुझे पहचानो, और उम्मते मुस्लिमा को कहा गया मुझे याद करो। यानी उम्मते मुस्लिमा से तो एक्सपेक्टेशन है कि वो बगैर नेमत देखे वैसे ही अल्लाह को याद करेगी, ये उनकी एक फजीलत, एक उनका ऑनर बताया गया। मगर मसला यही है कि बनी इसराइल की तरह हम भी ऑनर्स के मजे लेते रहते हैं कि हाँ हमें तो ये फजीलत मिल गई, हमें तो ये हो गया, लेकिन जो फजीलत जिम्मेदारी के साथ आती है ना, जिम्मेदारी को हम भूल जाते हैं। हर फजीलत जो इंसान को मिलती है उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है। कोई चीज आपको, कोई देखिए आपको कोई ओहदा मिलता है, अब कोई इंसान ओहदा लेके कहे मैं तो प्रेसिडेंट बन गया, कितना मजा आ रहा है, मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं, मैं कभी यहां सैर को जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी उस पे हुक्म चला रहा है, और जो प्रेसिडेंट का काम है वो कर नहीं रहा। पता है कि कितना बड़ा जो प्रेसिडेंट होता है उसका काम कितना जिम्मेदारी वाला होता है, कितने एक बड़ी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब वो काम करे ना तो आप उसको क्या कहेंगे। एक आदमी का मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं इस बात के ऊपर बड़ा मजा लेता है, और कब मरीज उसके सामने आए उसका इलाज ही ना करे तो वो क्या डॉक्टर हुआ। तो बात ये कि ये इनको नेमतें दी अल्लाह ने, और इनको अल्लाह ने दिखाना चाहा कि ये दुनिया के लिए रोल मॉडल बने, वो उन नेमतों में ही खो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया वो औफू भी आदी, मेरे साथ जो तुमने वादा किया उसको पूरा करो। और वादा क्या किया था कि अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, और खास तौर पर नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान, ये लाना है, तुमने ये वादा किया था मेरे साथ, क्योंकि इनकी किताबों में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशीन गोई है वो इनकी किताबों में मौजूद थी, और ये बड़ी अच्छी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, जानते थे, फिर भी ईमान क्यों नहीं लेकर आए। इसकी आगे इंशाल्लाह ताला हम बात पढ़ते रहेंगे, मगर यानी ये ऐसा नहीं था कि उनको जानते नहीं थे, और अल्लाह ताला ने वादा इनसे लिया था, और ये भी कुरान पाक में साफ आता है कि कैसे इनसे वादा लिया था। अल्लाह ताला ने सूरह मायदा में फरमाया वलकद अखद अल्लाहु मीसाक बनी इसराइल व बाअथना मिनहुम 12 नकीबा, अल्लाह ने इनसे वादा लिया था और इनमें 12 नकीब मुकर्रर किए, वकाल अल्लाहु इन्नी माकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या शर्त है, ला इन अकम तुम सलात, तुम कायम करो नमाज, वो आते ही तुम जकात, जकात दो, नमाज और जकात इनमें भी थी, वा आमन तुम भी रसूली, میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، عزرتموہم اور ان کی مدد کرنی ہے تم نے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا اور میرے راستے میں قرض حسنا دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لأکفرن عنکم سیئاتکم. اب یہ اگلا پارٹ ہے، ابھی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. تو یعنی اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا ہوا تھا، کیا نماز قائم کرو، زکات دو، میرے رسول آئیں گے تمہارے پاس، ان کی تم نے ایمان لا کے مدد کرنی ہے اور اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے وعدے کو پورا کرو، اوفی بھی عہدکم، میں اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کروں گا. اللہ نے کیا وعدہ کیا، تم اگر یہ وعدہ پورا کرو گے تو میں کیا کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں ہیں. یہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا، تو تم اپنا وعدہ پورا کرو تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. سمجھ آئی بات؟ یہ نہیں کہ تم تو کچھ کرو نہ، نعمتیں لے کے بیٹھے رہو. اور یہ اتنے زیادہ پراؤڈ تھے کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، اور آج تک بھی آپ کو پتا ہے آپ کو جیو بن نہیں سکتے، کنورٹ نہیں ہو سکتے آپ جیو، نہ یہ کنورژنز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ ساری جو لوگ ہیں نا یہ ہم سے حقیر ہے، ہم سب سے سپیریئر چیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں تو اپنا وعدہ پورا کروں گا. سمجھ آئی بات؟ ہمیں بہت بڑا لیسن اس میں ملتا ہے، بہت بڑا آئی اوپننگ. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں نا، اب چھوٹی سی بات مثال لے لیں، آپ کے سامنے کوئی میچ ہو رہا ہے جس کے اندر ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف کوئی کافر ہے، تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں، اللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، اللہ تو ہماری مدد کر. یعنی آپ کو اس کا مطلب پتا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے اللہ نے ان کو فرمایا نا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تو ہمیں اندر سے یہ بات پتا ہے کہ جو ایمان لا کر فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی طرف ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں اللہ تو کافروں کی نہیں، ہماری مدد فرما، اللہ ہم آخر تو مسلمان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ ایمان لا کے عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ. اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو واقعی اللہ پہ سچا ایمان رکھتے. تم اپنا وعدہ تو پورا کرتے نہیں، تمہارے پاس تو وہ ایمان ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا ہے تم سے. تم تو ویسے چلتے ہی نہیں ہو جیسے اللہ نے تم سے وعدے لیے. ہم نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہوا؟ جی ہاں، کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کو الہ نہیں سمجھتے، کوئی ہے ہی نہیں الہ. الہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی ہمارا تو سب کچھ تو ہی ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرا ہی حکم چلے گا. جب آپ نے کسی کو الہ مان لیا نا، خدا ماننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب آپ نے خدا سے اوپر اپنی اولاد کو بھی بٹھا دیا، خدا سے اوپر اپنے ماں باپ کو بھی بٹھا دیا، خدا سے اوپر اپنے ہسبینڈ کو بھی بٹھا دیا، خدا سے اوپر سارے دنیا کے لوگوں کو بھی بٹھا دیا. لوگ ایسے کہتے ہیں، اللہ ایسے کہے تو کہے ہمیں نہیں پتا، لوگ تو ایسے کہتے ہیں، دنیا میں بھی تو چلنا ہے ہم نے. تو جب سب کو خدا سے اوپر بٹھا دیا تو آپ نے تو اس کو خدا ہی نہ سمجھا. جب آپ نے اس کو خدا نہیں بنایا، آپ نے ایک منہ سے بات کہی اور اس کو پورا نہیں کیا، لیکن آپ ایکسپیکٹ اللہ سے کیا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے؟ اس کی مدد کا وعدہ تو ان کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے. ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ اللہ ہمیں بس جنت میں داخل کرے. وہ جنت کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن تو دیکھو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل تو ہم سے نہیں ہوتا، صاف منہ سے بولتے ہیں نہیں عمل ہم سے نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، عمل نہیں ہم سے ہوتا. تو پھر آپ تو خود ہی منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کا وعدہ تو ان کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ سمجھنا جنت تو بس ہمارے لیے، جنت تو بنی ہی ہمارے لیے، وہ تو خالی رہ جائے گی ہمارے بغیر. نہیں، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ نبھاؤ گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم نہ نبھاؤ وعدہ اور پھر تم اللہ سے ایکسپیکٹ کرو کہ وہ تو اپنا وعدہ نبھائے. کس بات کا؟ وہ تو وعدہ تھا ہی ان کے لیے جو کہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، تم اپنا تو پورا کرتے ہی نہیں. یہ آئی اوپننگ ہے نا ہمارے لیے. ہم کیا بنی اسرائیل کو دیکھیں، ہم ان سے سیکھیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل تھے، وہ تو بہت برے تھے، وہ تو مغضوب علیہم تھے، اور ہم تو چوزن ونز، ہم تو امت محمد، ہم تو فلاں، ہمارے لیے تو ایسا، ہمارے لیے تو دیکھنا وہاں پہ کیا ہوگا. वो इस खुशफहमियों से निकलो, वो भी यही कहते थे, हम तो चोजन माना, आज भी उनसे पूछ ले वो यही कहते हैं। लेकिन काम क्या है? तुम वादा पूरा करो, फिर अल्लाह वादा पूरा करेगा। ये खाली बातें नहीं है, मुंह से बोलते जाए हम चोजन मान जाए। चोजन मान अल्लाह ने तुम्हें किसी वजह से किया ना, किस क्यों चूज किया तुम्हें कि तुम इमामत करो दुनिया में। क्या इमामत? लीडर बन के नहीं बैठ जाना, इस अल्लाह के दीन को आगे लोगों तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। तुम रोल मॉडल बन के दिखाओ, तुम अल्लाह का पैगाम लेकर आगे चलोगे। अल्लाह ने इसके लिए तुम्हें ये ऑनर दिया इतना बड़ा, क्योंकि ये बहुत ऑनर की बात है। कोई इंसान है वो लोगों के साथ किसी तरह की और भलाई का काम करता है, उनका इलाज करता है, कोई करता है लोगों की, कोई चीजें ठीक करता है, कोई लोगों के घरों की सफाई करता है, कोई, वो भी सारे लोगों की मदद ही कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी नेकी किसी दूसरे इंसान के साथ ये है कि आप अल्लाह का पैगाम उस तक पहुंचा दें, ये सबसे बड़ी नेकी है, क्योंकि उससे उसकी दुनिया और आखरत हमेशा की जिंदगी संवर जाती है। लेकिन अब तुमने क्या किया? पहले ये मनसब उनको दिया गया था, हम उस वक्त नहीं थे, उम्मत मुस्लिमा नहीं थी उस वक्त, ठीक है, अभी उनकी बात। तो अब ये बात सुनाई जा रही है जो यहूदे मदीना है कि देखो सुनो ए बनी इसराइल, तुम याद करो तुम्हारे ऊपर नेमत जो की। अब वो कहे हमारे ऊपर क्या नेमत की, वो तो उनके ऊपर की थी। भाई जब आपके वालदेन के ऊपर, जब आपके आबा के ऊपर कोई नेमत की जाती तो वो आपके ऊपर ही होती। जैसे हम नहीं कहते हमारे अंदर तो ये लोग आए, हम तो, हमारे तो ऐसे थे, हमारे तो ऐसे ऐसे उलमा थे, हमारे तो इतना इल्म था, ये जो साइंटिस्ट थे वो सब हमारे थे, इब्ने सीना ले लें, फलां ले लें, तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उस वक्त क्या कह रहे थे, हम ही है ना, हम हमारे, तो वो मैं या मेरे तो नहीं है। हमारे से मतलब होता है कि हम अपने ऊपर इसकी फजीलत ले रहे हैं, हम में अबू बकर सिद्दीक, हम में उमर, हम इस तरह की बात हम करते हैं। क्योंकि जो आपके आबा होते हैं उनकी कोई फजीलत को आप खुद ओन करते हैं कि ये हमारी फजीलत है, कि मुसलमान तो ऐसे, मुसलमान तो, वो सारा आप अपने ऊपर ले रहे होते हैं ना इसका शर्फ। तो इसी तरह उनके आबाओ इजदाद के ऊपर जो नेमते हो वो उनके ऊपर ही थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अपना वादा पूरा करो, मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूंगा, मैं भी तुम्हें दुनिया और आखरत की भलाइयां ऐसे दूंगा कि आखरत में जन्नत में दाखिल करूंगा, तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर दूंगा। वह या फरहाबून, और सिर्फ मुझी से डरो। अच्छा यहाँ पे हो सकता था फरहाबूनी भी हो सकता था, मुझसे डरो, लेकिन कहा गया या फरहाबून। या का मतलब क्या, सिर्फ मुझसे डरो। या को पहले लाया गया, ये इसमें भी ताकीद होती है जोर देने के लिए, सिर्फ मुझसे। अब क्या था उनका, क्या प्रॉब्लम था कि वो लोग डरते थे कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए, याद रखिए कि ये उनके ना उलमा से, जो उनकी जो राहिब, राहिब तो नहीं, जो उनके क्या उसको कहते हैं, रैबाइस, रैबाइस, रैबाइस थे, उनसे बात हो रही है। वो लोग किस बात से डरते थे जो कहा गया सिर्फ मुझसे डरो, यानी किसी और से ना डरो, ये क्यों कहा जा रहा है? वो किससे डरते थे? जाहिर है किसी से डरते थे जो कहा जा रहा है कि सिर्फ मुझसे डरो। असल में बात ये है कि बनी इसराइल का प्रॉब्लम ये था कि वो लोग फतवे देते थे, लोगों को तालीम देते थे, लोगों के को में दीन का जो प्रचार करते थे। तौरात जो थी उनके यहां भी ऐसी थी कि वो तौरात के बड़े बड़े उलमा थे, और वो ही लोगों को जो भी बात बतानी होती थी वो बताते थे। लोगों की डायरेक्ट एक्सेस ऐसे नहीं थी, वो तौरात पढ़ भी लेते थे। एक सहाबी वो फरमाते हैं ना कि या रसूल्ला कैसे ये होगा जबकि हम पढ़ते हैं कुरान को और हम इसको, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो फिर कैसे कुरान उठ जाएगा? आपने फरमाया था कि वो तो वो यहूदी भी पढ़ते हैं, तो ये लोग भी पढ़ते थे, अपनी तौरात को पढ़ते थे, लेकिन बगैर समझे, इनको समझ कुछ नहीं थी, जैसे आज हमारा हाल है। उनको समझ कुछ नहीं थी, उनके उलमा ही थे जिनको समझ थी सारी, ठीक है। अब उलमा जो भी बताएंगे बस वही है ना, लोग तो कुछ भी नहीं जानते, जैसे आज जो भी फतवा दे दे बस उस लोग उसको मान लेते हैं। तो अब इनको डर क्या था? उनको डर ये था कि अगर हम कोई ऐसी बात करेंगे कि ये इस नबी पर ईमान ले आओ, ये वही नबी है जिसके बारे में हमारी किताबों में बताया गया है, क्योंकि इनकी किताब में आज भी है, आज भी है, इनकी किताब में है, किताबे इस्तस्ना के अंदर है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। अब वो पता है मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह में कलाम नहीं डाला गया, मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो तख्तियां आई थी, तौरात की तख्तियां आई थी, यानी उसको वो लिखा हुआ था, तौरात लिखी हुई आई थी उनके पास। नबी अलैहिस्सलाम उम्मी थे, इनके पास कुरान लिखा हुआ नहीं आया था, अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाला और उनकी जुबान से जारी किया था। तो अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, जो हुक्म मैं उसे दूंगा वही वो उनसे कहेगा, और जो कोई मेरी इन बातों को, जिनको मेरा नाम लेकर कहेगा, ना सुनेगा तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बताया जा रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम आएंगे, तुमको उनकी नबुवत को मानना होगा, ये अहद अल्लाह ताला ने लिया था। और इतनी साफ बातें आज भी मौजूद है। अब अगर ये सोचे, जरा देर के लिए सोचे, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, अगर वो ये कह देते हैं कि ये वो ही नबी हैं, ये आ गए हैं, आप इनके ऊपर ईमान ले आओ, तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या होगा? जब दीन कारोबार बन जाता है ना, दीन बिजनेस बन जाता है, बिजनेस का मतलब ये नहीं सिर्फ कि पैसे मिलते हैं उसे, जब कुर्सियां मिलती हैं, हुब्बे जा आ जाती है, मेरी कुर्सी, मैं इतना बड़ा आलिम, अब क्या होगा? जब कहेंगे वो नबी आ गया, तो इस आलिम की क्या पोजीशन रहेगी? जीरो। कितने इसके फॉलोअर्स रहेंगे? जीरो। कितने फैंस होंगे उसके? जीरो। सब तो चले जाएंगे उन नबी के पास, कहां नबी का मकाम और कहां एक आलिम, वो तो उन नबी को जाके मानेंगे, और जब वो उनको मानेंगे तो मेरा क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। मेरी हैसियत तो, यानी बिल्कुल अपने आप को तो जीरो कर देना, मेरी कुर्सी गई, मेरा ये मकाम गया, लोग मेरे पास पूछने आते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, नजराने देते हैं, वाह वाह होती है, मेरी इतनी बड़ी, यानी जाहिर है उलमाए यहूद बड़ा एक मकाम रखते थे उनमें, जैसे आज भी हम अपने उलमा को एक मकाम देते हैं, एक मर्तबा है उनका। तो जब वो नबी आ गया और नबी के पास सारे लोग चले गए, तो इनके पास तो जाहिर है इनका तो खत्म हो गया ना फिर सारा कुछ, इनका तो काम धंधा खत्म, फिर बस लपेटे अपनी सब कुछ और घर जाएं, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो हम कैसे ये करें? तो डर था कि वो तो सारे भाग जाएंगे हमसे। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या फरहाबूनी, मेरे से सिर्फ डरो, इससे मत डरो कि ये चले जाएंगे हमसे और ये हमसे, हमारा क्या बनेगा, ये हमारी क्या हैसियत रहेगी। ये देखें, ये हुब्बे जा जो होती है ना, ये इतनी खतरनाक चीज होती है, अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे सबको, इतनी खतरनाक चीज होती कि इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भेड़िया जो बकरियों के रेवड़ को, भूखा भेड़िया वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो कि वो बेजा इंसान के दीन को पहुंचाती है। ये तो बिल्कुल दीन का सफाया कर देती इंसान के अंदर। जब ये आ जाता है ना कि ओ लोग बस मेरे बन के रहे, मेरा मकाम, मेरी इज्जत, मेरे पास लोग आए, मेरी वाह वाह हो, मुझे पूछें, सब दौड़ दौड़ के आके मुझे सलाम करें, मुझे पोजीशन की कोई हैसियत कोई दे, मुझे पोजीशन दे, मेरे लिए कोई खास कुर्सी रखी जाए जहां पे मुझे बिठाया जाए, मैं इस तरह आम लोगों में थोड़ी, इस तरह ये चीज इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। तो उनके अंदर ये चीज आ गई थी कि अब, और ये वाकई, ये तो शैतान ऐसे इंसान के अंदर लेकर आता है, ये वाकई कोई इंसान अपने आप को कितना नेक समझता हो, ये क्रीप इन करती है। कब का किसके अंदर हुब्बे जा आ गई, वो तो मतलब, अब हम क्या जाके, हम इतने बड़े स्कॉलर जो, अब हम जाके उनकी मजलिस में बैठ जाए आम लोगों के साथ। अब देखें कोई आलिम है, वो कहे ओ अब मैं दूसरे को इतना बड़ा आलिम समझ लूं, मैं उसका स्टूडेंट बन जाऊं, क्या कहेंगे मेरे स्टूडेंट्स कि इसको कुछ भी नहीं आता, अब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ही मिलके उसका स्टूडेंट बन जाऊं। यानी बेसिकली तो कहना ये था ना कि आओ उन नबी को मान ले तो हम सब चले, मैं भी और आप सब भी, हम उनके पास जाके उनकी मजलिस में बैठे, उनसे सीखे, तो मेरा क्या रह जाएगा फिर? आज देखें छोटे छोटे ओहदों के ऊपर ये बात होती है, ये तो बहुत बड़ी बात ही, वो तो बड़े बड़े आलिम थे, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये हो जाती है। हाय हम अपना ओहदा दे दें, हम अपनी पोजीशन दे दें, हम कैसे ये करें? कोई ही होता है जो इससे बच जाए, ये मैं बताऊं आपको, कोई ही होता है। इंसान को ये होता है कि मैं पहले एक पावर की पोजीशन पे था, मेरी पहले एक हैसियत थी, लोग मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम से जानते हैं, कि जीपीएल हूं मैं, ए जीपीएल हूं मैं, फलानी हूं मैं बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी हूं मैं, कोई टीचर हूं मैं, कोई आलिम हूं मैं, कोई स्कॉलर हूं मैं, कोई कोई आप सोचिए, दीन वालों के अंदर बिगाड़ की बात हो रही है यहाँ पे, ये दुनियावी बिगाड़ की नहीं बात हो रही, इन वजीरों और मुशीरों जिनको हम इतना लान तान करते रहते हैं, देखो इनको तो बस कुर्सी का पड़ा हुआ है, इनको तो बस ये पड़ा, हम कितनी लान तान करते, देखो इन कुर्सी का नशा है, वो कुर्सी का नशा अगर उन दुनियावी चीजों में होता है ना, तो दीन के मामलात में भी है, ये भी एक नशा है वो बेजा, कि बस मुझे पावर मिल जाए, मुझे को मैं चार लोगों के ऊपर, मैं चाहे चार ही लोग हूं मैं इनके ऊपर बड़ी बन के बैठ जाऊं, और इससे ज्यादा बढ़ के क्या कि लोग सलाम भी करें, लोग अब आगे आगे भी हो जाएं आपके, और लोग बस आपको इतनी इज्जत भी दे रहे हैं, इसका भी एक नशा होता है। क्यों इतने अमीर अमीर लोग जो होते हैं, उनके पास इतना माल होता है, इतना पैसा होता है, फिर भी वो क्यों इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, कभी वो कहीं और कोई अपना ऐसी कोई शुरू कर लेते हैं, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या वजह होती? ऐसे नहीं होते कि उनको कोई एकदम से रातों रात कोई खिदमत खल्क का शौक चढ़ गया, क्या होता क्या? पैसा तो उनके पास बहुत होता है, क्या चीज होती है कि वो मरे चले जा रहे थे कुर्सी के लिए? वो बेजा, ये जो लोगों को आगे पीछे होना, ये जो सलूट मारना, ये जो सलामे करना, ये जो एक पोजीशन का एक नशा होता है, ये जो झंडे वाली गाड़ी होना, ये जो हटो बच्चों के आगे नारे होना, ये भी एक एडिक्शन है, ये भी एक नशा है, और ये नशा जल्दी उतरता नहीं, जब ये एक दफा चढ़ जाए ना तो ये नहीं उतरता। और हम सबको देखने की जरूरत है, हम जहां कहीं भी हैं, हम कोई वजीर आजम नहीं है, कोई सदर नहीं है, लेकिन हमें छोटी सी जगह पर एक पोजीशन मिल जाए, फिर हमारी अकड़ देखें, फिर हमारी बातें देखें, फिर हमारी बढ़ाइयां देखें, हाँ मैं हूं वो जो ये करती हूँ काम, तो ये हुब्बे जाह अलग चीज है, हुब्बे माल अलग चीज है, इनको दोनों ही चीजें थी, क्योंकि यहाँ पे माल भी मिलता था अच्छे खासे, ये मालदार लोग थे, क्योंकि बड़े बड़े नजराने लोग देते थे, और वाहवा तो इतनी थी कि आपको पता है मुशरिकी ने मक्का भी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में थे, तो वो भी जाते थे इनके पास पूछने के लिए कि हमें बताएं कि हम ये जो नबी का होने का दावा कर रहे हैं, हम इनसे क्या सवाल करें, यानी इतनी इनको सारा अरब ही बहुत बड़ा देखता था, ये अहले किताब है, ये इल्म वाले लोग हैं, तुम इनसे मत डरो, मुझसे डरो,